हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह आंशी की आंख खुली तो वो अमन की बाहों में सोई हुई थी। अमन अभी भी नींद में था। आंशी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से उसके होठों पर किस किया ताकि अमन की नींद ना खुल जाए, लेकिन उसके ऐसा करते ही अमन की आंख खुल गई थी। आंशी को अपने करीब देखकर अमन ने उठते ही हल्की मुस्कुराहट दी और आंशी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, एक सीक्रेट एजेंट कभी गहरी नींद में नहीं सो सकता, तो आगे से मुझे नींद में प्यार करना हो तो मुझे जरा सा भी टच मत करना। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी की हर एक सुबह ऐसी ही हो, जब मैं आंखें खोलूं तो तुम मेरे करीब रहो। तुम नींद में होते हो तो मुझे भी तुमसे प्यार करना होता है। वो दिन कब आएगा जब तुम सोए हुए रहोगे और मैं तुम्हें नींद में किस करूंगी और तुम नहीं उठोगे? ये दिन तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा वेट कर लो, वो सुबह जरूर आएगी। जब तुम आंख खोलोगी तो खुद को मेरी बाहों में पाओगी, अमन ने जवाब दिया। उसने आंशी को और भी टाइटली होल्ड कर लिया था। आंशी ने नज़र उठाकर अमन की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस आज का दिन लास्ट है, शायद कल वो मुझे लेने आ जाए या खुद मुझे ही उसके पास जाना पड़े। अगर वो सवाल जवाब के ज़रूरी सेशन के अलावा कुछ और नहीं है तो घर पर ही रह लेते हैं ना, मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना है, चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना रहूं। अमन ने कुछ पल सोचा और फिर आंशी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बस कुछ ही देर की बात है, सवाल जवाब नहीं होंगे, तुम्हारी एक छोटी सी सर्जरी होगी जिससे एक ट्रांसमीटर तुम्हारी बॉडी के अंदर फिट किया जाएगा। डोंट वरी, दर्द नहीं होगा और सब कुछ काफी सफाई से होगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आने जाने के टाइम को कैलकुलेट करके बताऊं तो 3-4 घंटे लग सकते हैं, बाकी सर्जरी 3 से 4 मिनट की ही होगी। सर्जरी और ट्रांसमीटर फिट करने की बात सुनकर आंशी थोड़ा घबरा गई। वो झट से बोली, ये करना जरूरी है क्या? इतने मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, कुछ भी ज्वेलरी या ड्रेस में फिक्स कर देना, आई प्रॉमिस मैं कभी उसे नहीं निकालूंगी। ये सिस्टम काफी एडवांस्ड है और तुम्हारी हाई सिक्योरिटी के लिए सर ने उसे मंगवाया है। इससे हम तुम्हारी लाइव लोकेशन जान सकते हैं। अगर कोई ज्वेलरी या किसी और चीज में फिक्स किया तो विधिक आसानी से पकड़ सकता है, तुम भी उसे खो सकती हो, वो खराब भी हो सकता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, अमन ने बताया। ये आइडिया उसी का था। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर वो बोली, अच्छा अमन, उसे क्या पता नहीं चलेगा कि मेरे किसी तरह की सर्जरी हुई है? बॉडी पर निशान तो होगा ही ना, बहुत छोटा सा निशान होगा और ज्यादा पेन भी नहीं होगा। निशाना इतना छोटा होगा कि दिखेगा भी नहीं और जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। बस कुछ दिनों तक उसे अपने बालों से छुपा कर रख लेना। अमन आंशी को सब कुछ कहे प्यार से समझा रहा था ताकि वो घबराए ना। उसने अमन की बात मान ली थी। आंशी भी सब काफी सपोर्टिंगली ले रही थी क्योंकि उसे विधिक राणा को खत्म करना ही था। फिर अमन आंशी से थोड़ा अलग हुआ और धीरे से कहा, चलो तैयार हो जाओ, कुछ देर में एजेंसी ऑफिस चलना है, मैं तब तक रेडी होकर तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, मुझे भी तुम्हारी किचन में हेल्प करनी है, अचानक आंशी ने कहा। आज तक उसने ऐसा कभी नहीं कहा था और अब वो ऐसा क्यों कह रही थी, अमन उसका रीजन अच्छे से जानता था। आंशी बस कुछ भी करके अमन के साथ रहना चाहती थी। अमन ने भी उसे मना नहीं किया। कुछ ही देर में दोनों साथ में किचन में थे और ब्रेकफास्ट बना रहे थे। अमन ने अंदर आते ही आंशी से पूछा, चलो बताओ तुम्हें क्या खाना है? मैं कुकिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत कुकिंग जानता हूँ, उस हिसाब से ही बताना। मुझे मक्के खाने का मन कर रहा है, आंशी ने जवाब दिया। ओके, ये तो बहुत सिंपल होता है और मैं कर लूंगा। तुम फिलहाल के लिए मेरी इतनी ही हेल्प कर सकती हो कि मुझे हर एक चीज पकड़ाती रहो, अमन ने कहा, जिस पर आंशी ने हाँ में सिर हिला दिया। अमन जैसे जैसे जो सामान मांग रहा था, आंशी उसे पकड़ाए जा रही थी। अमन को सब कुछ देने के बाद आंशी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और मासूमियत से कहा, अब इसे भी पकड़ लो और कभी मत छोड़ना। अमन ने मुस्कुराते हुए आंशी की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा। अमन और आंशी एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, उनका सिर जुड़ा हुआ था। अमन ने फिर धीरे से कहा, अगर इस तरह की हरकतें करोगी तो मेरा सच में तुम्हें भेजने का मन नहीं करेगा। मेरा भी कौन सा जाने का मन कर रहा है, पर मैं अपनी लाइफ किसी डर में नहीं जीना चाहती। अब तक मैंने बहुत डर कर जी लिया कि वो आ जाएगा, मुझे ले जाएगा। तुम्हारे साथ होते हुए मैं थोड़ा सिक्योर फील करती हूँ, लेकिन हम पूरी तरह श्योर नहीं हो सकते। कभी ना कभी वो हमारी लाइफ में जरूर आएगा, उसे सब पता है, तो वो हम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घर में बंद रहकर बिता दूं, सिर्फ इस डर से कि वो विधिक राणा मुझे ले जाएगा, आंशी ने जवाब दिया। बोलते हुए उसकी आंखें नम होने लगीं। अमन समझ सकता था कि आंशी ने वाकई अपनी जिंदगी के कुछ साल किस तरह डर डर कर बिताए थे। अमन ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। अब उनके होठ आपस में जुड़े हुए थे और अमन आंशी को काफी सॉफ्टली किस कर रहा था। वो इससे आंशी को सिक्योर फील करवाना चाहता था ताकि वो शांत रहकर खुद को रिलैक्स कर सके। थोड़ी देर के बाद आंशी अमन से अलग हुई और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, थैंक यू सो मच हर मोमेंट पर मेरे साथ रहने के लिए और मुझे इस तरह प्यार करने के लिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन उसने भी मुझे प्यार किया था, हर तरह से अडोर किया था, हर जिद पूरी की थी। अगर वो एक बुरा इंसान नहीं होता तो दुनिया का बेस्ट हस्बैंड या डैड होता। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमने न सिर्फ मुझे प्यार किया बल्कि मेरे पास्ट को एक्सेप्ट करके मुझे इस डर की फीलिंग से बाहर निकाला है। बोलते हुए आंशी इमोशनल होने लगी और उसने अमन को हग कर लिया। अमन बिना कुछ कहे बस उसे सहला रहा था। उसे सच में आंशी के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज कहीं न कहीं उसने आंशी की बातों से महसूस किया कि वो विधिक को मिस करती है। उसके दिल में आज भी एक खाली कोना है जहां पर विधिक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। उसके साथ बिताई आंशी की अच्छी यादें उस पर हावी हो सकती थी। अमन आंशी से अलग हुआ और उससे धीरे से कहा, अच्छा जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, मुझे पहले ऑफिस जाना पड़ेगा, तब तक थोड़ा आराम कर लेना, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, आंशी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। फिर उन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट लिया और अमन वहां से एजेंसी ऑफिस पहुंच चुका था। वो मिस्टर दत्त के साथ उनके ऑफिस में था और आज उसकी और आंशी की जो भी बात हुई थी उसके बारे में मिस्टर दत्त को बताया। पूरी बात जानने के बाद में मिस्टर दत्त के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने कहा, पहला प्यार ऐसा ही होता है, चाहे वो आपको तकलीफ ही क्यों ना दे, लेकिन आप उससे नफरत नहीं कर सकते हैं। विधिक ने इतना कुछ किया, उसके बाद भी आंशी के बिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा या वो उसे अभी याद करती होगी, ये मैंने नहीं सोचा था।
मैं उसे जज नहीं कर रहा, वो मुझसे प्यार करती हैं, ये उसकी बातों और हरकतों से साफ जाहिर होता है, लेकिन इस सच को हम झुठला नहीं सकते कि वो विधिक को आज भी भूल नहीं पाई है। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या ऐसे में आंशी को वहाँ भेजना सही होगा? अगर उसकी फीलिंग्स ओवरकम हो गईं, तो वो मुसीबत में पड़ सकती हैं, अमन ने जवाब दिया। पहले वो भी आंशी को भेजने के फेवर में था, लेकिन आज उसकी बातें सुनने के बाद उसे आंशी के लिए डर लग रहा था। हाँ, विधिक उसका फ़ायदा उठा सकता है, चिंता मत करो, मुझे उस पर यकीन है। उसने विधिक की वजह से अपने दोस्तों और बाकी चीज़ों को खोया है, वो आज भी अपनी आज़ादी को मिस करती है। किसी को याद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर बेफिक्र रहो कि उसे विधिक के साथ रहना होगा, मिस्टर दत्त ने अमन को समझाया। अमन ने उनकी बात पर हामी भरी। वो भी इस बात को जानता था कि आंशी विधिक के साथ नहीं रहना चाहती है। उसने सिर हिलाया और खुद को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, हमें उस पर यकीन करना होगा और वो कर लेगी, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी, मिस्टर दत्त ने आगे कहा। ठीक है, फिर मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, वो यहाँ पहुँचती ही होंगी। वो चिप भी इंडिया पहुँच चुका है, बहुत छोटा है साइज में, तो ज़्यादा लंबा कट नहीं लगेगा। तुमने उसे सब समझा तो दिया है ना? हाँ, सब समझा दिया है, वो हर एक चीज़ के लिए तैयार है, मुझे बस उसे कॉल करके यहाँ आने को कहना है। आंशी बहुत इमोशनल है और उसे खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसके खुद की फीलिंग्स है, अमन ने कहा। मिस्टर दत्त ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, ठीक है, फिर भी मैं उसे एक बार फिर और समझा दूंगा, जाओ तुम उसे कॉल कर लो, मैं तब तक डॉक्टर से बात करता हूँ। अमन मिस्टर दत्त के केबिन से बाहर निकल गया और आंशी को कॉल करने जा रहा था। उसने आंशी को कॉल करके एजेंसी ऑफिस आने के लिए कह दिया था। वहीं आंशी घर पर तैयार हो रही थी, उसने नी लेंथ का पंक फ्लोरल फ्रॉक पहना था। तैयार होने के बाद आंशी ने खुद को आईने में देखा और गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने खुद से कहा, किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ना है आंशी जिंदल, किस्मत ने तुम्हें मौका दिया है उन सब का बदला लेने के लिए जो विधिक ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे दोस्तों को मारा, तुम्हें टॉर्चर किया और आज तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग करना चाहता है। विधिक, तुम मेरे साथ कितने भी अच्छे क्यों ना रहे होगे, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुम कितने बुरे हो। आंशी इस वक्त घर के लिविंग रूम के आईने के सामने खड़ी होकर ये बातें कर रही थी, जिसे अमन सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुन पा रहा था। पूरी बात सुनने के बाद उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, चलो, अच्छा हुआ तुमने खुद ही मेरे दिल का डर दूर कर दिया, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। विधिक राणा, आ रही है तुम्हारी बर्बादी, तुम्हें प्यार से बर्बाद करने। अमन ने अपने मोबाइल स्क्रीन ऑफ की और फिर आंशी के आने का वेट करने लगा। वहीं आंशी भी टैक्सी लेकर एजेंसी ऑफिस के लिए निकल रही थी। पहले उसे विधिक से डर लगता था, इसलिए वो खुद का चेहरा कवर करके निकलती थी, लेकिन अब विधिक से किसी तरह का डर नहीं होने की वजह से आंशी आराम से बाहर निकल सकती थी। वो खुली हवा को एंजॉय कर रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से आंशी ऑटो से बाहर निकल गई और सड़क पर चलने लगी। कितना अच्छा लग रहा है इस तरह खुली हवा में सांस लेकर। मन कर रहा है कि आगे तक बस चलकर ही ऑफिस तक जाऊं, पर वो काफी दूर है, मुझे थोड़ी दूर बाद में टैक्सी लेनी ही होगी। हमेशा की तरह आंशी खुद से बातें करते हुए चल रही थी, तभी कुछ लोगों की नज़र उसे पड़ी। वो जॉनी का साथी था, जिसने आंशी का चेहरा उस वक्त देखा था जब आंशी ने बम ब्लास्ट के वक्त शोर मचाया था। वो अपने आदमियों के साथ था और उन्होंने आंशी को देखते ही पहचान लिया। उसने अपने आदमी से धीरे से कहा, अरे ये तो वही लड़की है ना जिसने हमारा प्लान बर्बाद किया था। रॉबिन बॉस के जाने के बाद वैसे भी कोई काम नहीं मिल रहा, इस लड़की के जरिए देखना, विधिक राणा तक पहुंचूंगा और इसे देने के बदले में वो मुझे बहुत सारा इनाम भी देंगे। उनका काम करना बहुत बड़ी बात है, उस आदमी ने अपने साथी से कहा और उसके साथ आंशी का पीछा करने लगा। आंशी बेफिक्र होकर एजेंसी ऑफिस की तरफ चल रही थी, तो वही वो दोनों उसे उठाने के फिराक में थे।